नीति वचन अध्याय 25। अध्याय 25 के वचनों को हिजकिया ने एकत्रित किया था जब वो राजा था, और उसके शास्त्रियों ने उन्हें नीति वचन के संग्रह में जोड़ा। राजा हिजकिया के राज्यकाल के समय राष्ट्र के उत्थान का समय था। हिजकिया से पहले राजा अनैतिकता के स्तर तक गिर चुका था। उसके राज्यकाल के समय में आत्मिक उत्थान हुआ। ये प्रजा के लिए भी उत्थान का समय था। जैसे ही उनमें आत्मिक उत्थान के कारण उनमें परमेश्वर के वचन के प्रति रुचि और लगाव उत्पन्न हुआ, वैसे ही वहां आप देखते हैं कि लोगों में परमेश्वर के वचन में जब मनुष्य की सच्ची रुचि दिखाई दे तो आप निश्चय जान ले कि वहां आत्मिक जागृति आ गई है, क्योंकि आत्मिक जागृति परमेश्वर के वचन में नए सिरे से रुचि उत्पन्न करती है। अतः हिजकिया के शास्त्रियों ने परमेश्वर के वचन की खोज आरंभ कर दी और उन्हें नीति वचनों का संग्रह मिला, जिससे उन्होंने नीति वचन की पुस्तक में जोड़ दिया। नीति वचन अध्याय 25 पद 1 इसी बात का उल्लेख करता है। सुलेमान के नीति वचन ये भी है, जिन्हें यहूदा के राजा हिजकिया के जनों ने नकल की थी। उन्होंने इन्हें ढूंढा और नकल करके नीति वचन की पुस्तक में जोड़ दिया। नीति वचन अध्याय 25 पद 2, परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती है। परमेश्वर ने अपनी बुद्धि, समझ, शक्ति और सामर्थ गुप्त रखी है। परमेश्वर ने जगत के भेदों को गुप्त रखा है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती है। नीति वचन अध्याय 25 पद 3, स्वर की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई और राजाओं का मन, इन तीनों का अंत नहीं मिलता। आगे के दोनों पद एक साथ जुड़े हैं। नीति वचन अध्याय 25 पद 4 और 5, चांदी में से मैल दूर करने पर वो सुनार के लिए काम की हो जाती है। राजा के सामने से दुष्ट को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी। इसलिए मैल को दूर करना, हम जानते हैं कि वो दिन आ रहा है जब परमेश्वर हमारे कामों को आग के द्वारा परखेगा, और जब हम राजा के सामने खड़े होंगे तब हमसे मैल निकाला जाएगा, फिर परमेश्वर धार्मिकता से अपना राज्य स्थापित करेगा, हमारा सारा मैल दूर किया जाएगा। नीति वचन अध्याय 25 पद 6 और 7, राजा के सामने अपनी बड़ाई ना करना और बड़े लोगों के स्थान में खड़ा ना होना, क्योंकि जिस प्रधान का तूने दर्शन किया हो उसके सामने तेरा अपमान ना हो, वरन तुझसे ये कहा जाए आगे बढ़कर विराज। यीशु ने कहा, जब कोई तुम्हें भोजन में बुलाए तब मुख्य स्थान में मत बैठना, सामान्य जगह पर बैठना। ये अति उत्तम होगा कि निमंत्रण देने वाला स्वयं आकर आपसे कहे, ओ मेरे मित्र, आप यहां आकर बैठो, अपेक्षा इसके कि आप किसी मुख्य जगह पर बैठे हो और वो आपको आकर कहे, मुझे क्षमा करे, आपका स्थान यहां नहीं वहां है, कृपया ये जगह इस सज्जन को दे दीजिए। यीशु मसीह लगभग सुलेमान का ही नीति वचन दोहरा रहे हैं, और बड़े लोगों के स्थान में खड़ा ना होना, क्योंकि जिस प्रधान का तूने दर्शन किया हो उसके सामने तेरा अपमान ना हो, वरन तुझसे ये कहा जाए आगे बढ़कर विराज। नीति वचन अध्याय 25 पद 8 से लेकर 10 तक, झगड़ा करने में जल्दी न करना, नहीं तो अंत में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करे तब तू क्या कर सकेगा? अपने पड़ोसी के साथ वाद विवाद एकांत में करना और पराये का भेद न खोलना, ऐसा न हो कि सुनने वाला तेरी भी निंदा करे और तेरा अपवाद बना रहे। नीति वचन अध्याय 25 पद 11 खूबसूरत पद है। जैसे चांदी की टोकरियों में सुनहले सेब हो, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। मुझे नहीं पता कि सुनहले स्वादिष्ट सेब चांदी की टोकरी में होते हैं, लेकिन वो रसीले लगते हैं। ये एक सही कहा गया वचन है। कुछ लोगों के पास सही समय पर सही बात कहने का वरदान होता है। जब कोई व्यक्ति बेचैन हो, तो ऐसे में कोई इस वरदान के साथ आकर सही समय पर सही बातें कर सारी समस्या को समाप्त कर देता है। आप आशा करते हैं कि सारी बेचैनी चली जाएगी, लेकिन एक सही कहे गए शब्द से। ये शब्द कितना प्रतापी होता है। परमेश्वर हमें सही समय पर सही बात कहने का वरदान दे। मुझे नहीं मालूम, बहुत बार ऐसा होता है जबकि हम सही बात कहना और करना जानते हैं, परंतु कहने में कठिनाई होती है। ये किस तरह की दुविधा है? मैं सही बात कहना जानता हूं, परंतु कहने में मुझे कठिनाई होती है। मैं अपनी पत्नी के साथ भी कई बार जो कुछ भी मैं जानता हूं और जो मुझे कहना चाहिए, कहने में कठिनाई का सामना करता हूं, पर मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों होता है। ये एक तरह से असामर्थ्यता की दीवार है जो मुझे सही समय पर सही बात करने नहीं देगी। कई बार ऐसा होता है कि हम सही समय पर सही बात कहकर सारे वातावरण को सहज बना सकते हैं। एक सही बोला गया शब्द कितना प्रतापी होता है। और बहुत बार हम सही बात जानते हैं पर बोलते नहीं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। वास्तव में ये एक बुराई है कि किसी चीज को होने दे, जबकि आपका एक सही शब्द इस बुराई को रोक सकता है। ये हमारे हृदयों की मूक एवं पतित अवस्था है। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, ये बात मुझे पसंद है। लेकिन कभी कभी अपने आप से इतना क्रोधित हो जाता हूं, क्योंकि मैं जानता था कि मुझे क्या करना चाहिए, परंतु मैंने नहीं किया। नीति वचन अध्याय 25 पद 12 से लेकर 16 तक। जैसे सोने के नत्न और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। जैसे कटनी के समय बर्फ की ठंड से, वैसे ही विश्वास योग्य दूत से भी भेजने वालों का जी ठंडा होता है। जैसे बादल और पवन बिना वृष्टि निर्लाभ होते हैं, वैसे ही झूठ मूठ दान देने वाले के बड़ाई मारना होता है। धीरज धरने से न्यायी मनाया जाता है और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। क्या तूने मधु पाया तो जितना तेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना, ऐसा न हो कि अधिक खाकर उसे उगल दे। ये एक रोचक पद है। नीति वचन अध्याय 25 पद 17। अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पांव को रोक, ऐसा न हो कि वो खिन्न होकर घृणा करने लगे। आप किसी के पास जाकर व्यर्थ में बैठ जाएं, जबकि उसे अपना काम करना है, तो वो मन ही मन आपसे अप्रसन्न होगा। अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पांव को रोक। नीति वचन अध्याय 25 पद 18 से लेकर 20 तक। जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता है, वह मानो हथौड़ा और तलवार और पैना तीर है। विपत्ति के समय विश्वासघाती का भरोसा टूटे हुए दांत व उखड़े पांव के समान है। जैसे जाड़े के दिनों में किसी का वस्त्र उतारना या सज्जी पर सिरका डालना होता है, वैसे ही उदास मन वाले के सामने गीत गाना होता है। जैसे शोरा पर सिरका डाला जाता है तो वो बहुत ही अधिक खट्टा हो जाता है, वैसे ही उदास मन वाले के सामने गीत गाना होता है, वो उसके मन को चुपता है। नीति वचन अध्याय 25 पद 21। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना। पौलुस रोमियो की पत्री में लिखता है, रोमियो 12 अध्याय 20 पद, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। नीति वचन अध्याय 25 पद 21 और 22, और यदि वो प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। इसका क्या मतलब है? मुझे निश्चय है कि जलाने वाले कोयलों का ढेर लगाना बुरी बात नहीं है। शायद वहां कोई रिवाज होगा और हमें समझना होगा कि सिर पर कोयले के ढेर का क्या अर्थ होता है, परंतु मुझे नहीं लगता कि इसका अर्थ उसके सिर पर नरक का ताज है। किसी ने कहा, अर्थ उनके लिए शर्मिंदगी जैसे है। दूसरे शब्दों में, यदि आपका बैरी भूखा हो और आप उसको खाना खिलाते हो, और यदि वो प्यासा है और आप उसे पानी पिलाते हो, तो आप उसके सर पर आग के अंगारे रखते हो। इस भले काम के लिए परमेश्वर आपको पुरस्कार देगा। मेरे कार्य करने का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि मैं उसके सिर पर जलते हुए कोयलों का ढेर लगाऊं, वरन हमारे इस व्यवहार में दया और उदारता होनी चाहिए। नीति वचन अध्याय 25 पद 23, जैसे उत्तरी वायु वर्षा को लाती है, वैसे ही चुगली करने से मुख पर क्रोध छा जाता है। कोई चुगली कर रहा है, उसको टेढ़ी नजर से देखो, वो रुक जाएगा। चुगली करने से मुख पर क्रोध छा जाता है। नीति वचन अध्याय 25 पद 24, लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। इस पद को हमने पहले भी देखा था। शास्त्रियों ने इस पद की जो की त्यों नकल की है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें इस पद से बड़ा आनंद आ रहा था। नीति वचन अध्याय 25 पद 25 से लेकर 27 तक, जैसे थके मांदे के प्राणों के लिए ठंडा पानी होता है, वैसा ही दूर देश से आया हुआ शुभ समाचार भी होता है। जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है, वह गंदेले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान है। बहुत मधु खाना अच्छा नहीं, परंतु कठिन बातों की पूछपाछ महिमा का कारण होता है। और अंतिम पद में नीति वचन अध्याय 25 पद 28, जिसकी आत्मा वश में नहीं, वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना नाका करके तोड़ दी गई हो। एक ऐसा मनुष्य जिसकी आत्मा उसके वश नहीं है, जो सदा क्रोध करता है, वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना तोड़ दी गई हो। हे परमेश्वर, हमें अपनी आत्मा को वश में रखने में सहायता कर।